अयोध्या, फैजाबाद में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की चौंकाने वाली हार के लिए व्यापक रूप से बताए जाने वाले मुख्य कारणों में से एक ये है कि जिस तरह से राम मंदिर का निर्माण और पवित्रीकरण किया गया, वह सैकड़ों गरीब लोगों के जीवन, आजीविका और घरों को सचमुच रौनते हुए किया गया। एडम ने अपनी ईयर टू द ग्राउंड श्रृंखला में इस प्रक्रिया में मंदिर शहर के लोगों पर हुए व्यापक दुख को मार्च 2023 में ही दर्ज कर लिया था। एडम इस श्रृंखला को लोकसभा चुनाव परिणामों के संदर्भ में फिर से प्रस्तुत कर रहा है। ये पूरा ध्यान देकर सुनना। नई अयोध्या में लुप्त राम राज्य, भाग एक, शिवम मिश्रा, 1 मार्च 2023। यकीनन हिंदू सभ्यता सबसे पुरानी सभ्यता है, जिसमें देवताओं, धर्मशास्त्रों और दर्शन शास्त्रों या उनकी व्याख्याओं की एक बहुरूप दर्शक श्रृंखला है। यहां तक कि देवताओं की पदानुक्रमिक स्थिति भी हजारों वर्षों में विकसित हुए कई संप्रदायों के सांस्कृतिक ब्रह्मांड विज्ञान में भिन्न होती है। अब्राहमिक भगवान के विपरीत हिंदू देवता केवल मनुष्यों के पापों और अच्छे कामों को रिकॉर्ड करने के लिए 9वें आसमान पर बैठना पसंद नहीं करते हैं। वे दुष्टों का वध करने और धर्मपरायण लोगों को पुरस्कृत करने के लिए व्यक्तिगत रूप से पृथ्वी पर उतरते हैं। चूंकि हमारे देवताओं का अवतार एक आवर्ती प्रक्रिया है और हर बार एक नए रूप में प्रकट होता है, इसीलिए हिंदुओं के पास कभी भी भगवान के उस रूप के बारे में विकल्पों की कमी नहीं होती है जिसकी वे पूजा करना चाहते हैं। प्राचीन काल से ही हिंदू अपने इष्ट देव, पसंदीदा भगवान की पूजा करते आ रहे हैं और उन्हें कई तरह के देवताओं में से चुनते हैं। अगर कोई एक देवता है जिसे हिंदू सभ्यता का शाश्वत राजा कहा जा सकता है, तो वह कोई और नहीं बल्कि श्री राम है। रामो विग्रहवान धर्मः साधु सत्य पराक्रमः राजा सर्वस्य लोकस्य देवानाम इव वासवः। राम धर्म के अवतार हैं, वे समतावान हैं, सत्य उनका पराक्रम है तथा इंद्र के समान वे समस्त देवताओं के राजा हैं। तीसरा खंड, 37वां सर्ग, 13वां श्लोक। श्री राम की राजधानी अयोध्या हिंदू धर्मशास्त्रों में वर्णित 7 पवित्र पुरियों या शहरों में से एक है। आधुनिक अयोध्या फैजाबाद के पूर्ववर्ती जिले में एक छोटा सा शांत शहर है, जिसे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी सरकार ने अयोध्या नाम दिया है। एक लड़के के रूप में पवित्र स्थान की मेरी शुरुआती यात्राओं के दौरान मुझे लहराती दाढ़ी और वैष्णव तिलक वाले साधुओं की याद आती है, जो मठों, सन्यासियों के निवास आदि में भीड़ लगाते थे और राम धुन गाते थे। लोकप्रिय टेली धारावाहिक रामायण से रविन्द्र जैन के दिव्य भजनों के साथ राम नाम वातावरण में गूंजता था। अयोध्या शहर रामायण के अन्य पात्रों को समर्पित मंदिरों और महलों से भरा हुआ था। रामलला विराजमान के दर्शन के लिए लोहे के पिंजरों की भूल भुलैया से गुजरना पड़ता था और एक कांस्टेबल उन्हें धक्का देकर कहता था कि यही है राम जन्मभूमि। मेरी माँ की बदौलत, जो तत्कालीन फैजाबाद जिले के एक छोटे से गांव से ताल्लुक रखती है, मैं उन कहानियों के साथ बड़ा हुआ हूँ कि कैसे दूर दराज के इलाकों में ग्रामीण कारसेवकों के जत्थों को राशन पहुँचाते थे। इन कारसेवकों में वे आस्थावान लोग भी थे जो इस बात पर आश्वस्त थे कि 498 वर्षों का संघर्ष 9 नवंबर 2019 की सुबह एक वांछित अंत पर पहुंच गया, जब बाबरी मस्जिद के मालिकाना हक के मुकदमे पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुनाया गया। काशी और क्योटो अंडरस्कोर विरोधाभास। अयोध्या हो या काशी, हमारे पवित्र स्थल बहुत समय से उपेक्षित थे। जीर्णोद्धार, संरक्षण और बेहतर सुविधाओं की बहुत जरूरत थी। अयोध्या की राम की पैड़ी का कुंड सड़ता रहता था और नदियों के घाटों पर खुले में शौच जाना, चाहे वह गंगा जी हो या सरयू जी, एक समस्या थी। ऐसे में काशी को जापान के हेरिटेज शहर क्योटो की तरह विकसित करने का कोई भी कदम स्वागत योग्य था। काशी और क्योटो दोनों में बहुत कुछ समान है, लेकिन इन शहरों के प्रशासकों और पदाधिकारियों में कोई समानता नहीं है। काशी के भूगोल की व्याख्या ब्रह्मांड के मानचित्रों के जाल के रूप में की गई है। पौराणिक साहित्य में इसके बारे में बहुत कुछ लिखा गया है और विदेशी और भारतीय विद्वानों द्वारा एक के बाद एक किताबें लिखी गई हैं। पंडित कुबेरनाथ शुक्ल ने स्कंद पुराण में वर्णित शिवलिंगों और देव विग्रहों का सावधानीपूर्वक मानचित्रण करने और उन्हें उनके आधुनिक समय के पते से जोड़ने का प्रयास किया। प्रोफेसर राणा सिंह ने काशी के संपूर्ण पवित्र स्थान का भूचुंबकीय सर्वेक्षण किया। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन बहुत धूमधाम से हुआ, लेकिन ये क्योटो में किए जाने वाले कामों के बिल्कुल उलट था। क्योटो में प्रशासन 2000 मंदिरों, मठों, विरासत भवनों और सदियों पुराने पेड़ों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन काशी विश्वनाथ कॉरिडोर सैकड़ों से ज्यादा पौराणिक मंदिरों, असंख्य कलाकृतियों, विरासत भवनों, हिंदी में भवन का मतलब इमारत, आमतौर पर एक बड़ी इमारत होता है, वाराणसी और अयोध्या में कई विरासत भवन ऐसी इमारतें हैं जिनमें कुछ मंदिर, उनसे जुड़े सन्यासी रहते हैं और उनका इस्तेमाल तीर्थयात्री अपने शहरों की यात्रा के दौरान भी करते हैं। और 13 पुराने पेड़ों, जिनमें अक्षयवट एक पवित्र बरगद का पेड़ भी शामिल है, का कब्रिस्तान है। क्योटो में स्थानीय समुदाय सक्रिय रूप से भाग लेता है और राज्य संरक्षक की भूमिका निभाता है। पौराणिक साहित्य और उनसे संबंधित ब्रह्मांड के संदर्भ में धरोहर को स्थानिक कार्यात्मक प्रतीक के रूप में संदर्भित किया जाता है, जो स्थानीयता और सार्वभौमिकता को जोड़ता है, जिसमें 4 पदानुक्रमिक रूप से परस्पर जुड़ी परतें शामिल हैं। ये स्थान, परिक्षेत्र, सीमांत और ब्रह्मांड हैं। हिंदू तीर्थ केवल जमीन का एक टुकड़ा नहीं है, बल्कि सांस्कृतिक ज्योतिष का प्रतिबिंब है। शास्त्रों में आचार संहिता और अनुष्ठानों के बारे में बहुत स्पष्ट रूप से बताया गया है, जिनका पालन स्थान और परिक्षेत्र के भीतर किया जाना चाहिए। तीर्थयात्रा और उससे जुड़े मार्ग धार्मिक और सभ्यतागत विरासत के सबसे महत्वपूर्ण अंग हैं। सभ्यता की अग्नि तब संरक्षित रहती है जब वर्तमान पीढ़ी अपने पूर्वजों द्वारा अपनाए गए उसी मार्ग पर चलती है, वही मंत्र जपती है, रास्ते में उन्हीं मंदिरों में जाती है और देवताओं को वही सामग्री चढ़ाती है। अयोध्या के 5 तीर्थ मार्गों का महत्व उपरोक्त परिप्रेक्ष्य के अनुसार अयोध्या के तीर्थ क्षेत्र में 5 तीर्थ मार्ग हैं। ये हैं 84 क्रोशी, 14 क्रोशी, पंचक्रोशी, रामकोट की परिक्रमा और अंतःग्रही की परिक्रमा। इन सभी मार्गों पर प्राचीन ग्रंथों में वर्णित तीर्थ स्थल और मंदिर हैं। 84 क्रोशी शाब्दिक रूप से 84 का मार्ग सबसे पुराना मार्ग माना जाता है और माना जाता है कि यह 148 स्थलों से जुड़ा है और मार्ग के नाम में निहित 84 संख्या 84 लाख योनियों का प्रतीक है, जिनसे जीवात्मा को मानव शरीर प्राप्त करने से पहले गुजरना पड़ता है। 84 क्रोशी परिक्रमा 84 के मार्ग की एक अनुष्ठानिक परिक्रमा 36 दिनों तक की जाती है। अगली परिक्रमा 14 क्रोशी 36 पवित्र स्थानों से जुड़ी है और माना जाता है कि यह श्री राम के जीवन से जुड़ी है। पंचक्रोशी यानी 5 का मार्ग मुख्य क्षेत्र को संदर्भित करता है, जो श्री राम के जन्म से संबंधित 30 सबसे पवित्र स्थानों से जुड़ा है और 6 घंटे के भीतर पूरा किया जाता है। अंतिम 2 परिक्रमाएं, रामकोट की परिक्रमा और अंतर्ग्रही, ज्यादा प्रचलन में नहीं है। ये सभी तीर्थयात्रा मार्ग संकेंद्रित वृत्त हैं। अंतर्ग्रही आंतरिक वृत्त की तरह है और 84 क्रोशी बाहरी वृत्त है। आस्थावानों के बीच एक प्रमुख राय है कि पुरातत्वविदों, संरक्षणवादियों और स्थानीय नागरिकों की सक्रिय भागीदारी के साथ अयोध्या के सांस्कृतिक कायाकल्प और भौतिक विकास को इन तीर्थयात्रा मार्गों के इर्द गिर्द केंद्रित किया जाना चाहिए। लेकिन अयोध्या में अब जो कुछ हो रहा है, जिसमें लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर इमारतों का बड़े पैमाने पर विध्वंस शामिल है, वह शहर के सांस्कृतिक कायाकल्प और भौतिक विकास के इस दृष्टिकोण के विपरीत है। हालांकि दक्षिणपंथी हिंदू दिमाग को उपनिवेशवाद से मुक्त करने का मंत्र जपना पसंद करते हैं, लेकिन उनका राजनीतिक नेतृत्व और नौकरशाही औपनिवेशिक हैंगओवर से मुक्त नहीं है। जब मैंने सुना कि एक विशेष नौकरशाह को अयोध्या में विकास परियोजना को क्रियान्वित करने के लिए भेजा गया था, तो मैं कांप उठा, क्योंकि उसे वाराणसी में पूरी तरह से चरित्रहीन और बेजान गलियारे के सफल क्रियान्वयन के पीछे मास्टरमाइंड कहा जा सकता है। विरासत का विध्वंस, मेरा दुःस्वप्न सच हो गया। तबाही के वीडियो आने लगे, नागरिक अपनी संपत्तियों के नुकसान और राज्य द्वारा दिए गए मामूली मुआवजे पर रो रहे थे। मेरे एक परिचित ने नया घाट को हनुमानगढ़ी से जोड़ने वाली सड़क पर संपत्तियों के विध्वंस का एक वीडियो साझा किया। उस मार्ग के किनारे सबसे पुराने विरासत मंदिरों और भवनों में से एक था। कानूनी तौर पर 1 सदी से अधिक पुरानी संरचनाओं को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI या भारतीय राष्ट्रीय कला और विरासत ट्रस्ट के विशेषज्ञ मार्गदर्शन में संरक्षित किया जाना चाहिए, लेकिन ठेकेदारों द्वारा इन्हें बेरहमी से गिराया जा रहा था। एक स्थानीय दैनिक ने बताया कि लक्ष्मण किला, सियाराम किला और सदगुरु सदन जैसे विरासत भवनों के कुछ हिस्सों और 14 क्रोशी मार्ग पर कुछ छोटे मंदिरों को सड़कों को चौड़ा करने के लिए ध्वस्त कर दिया जाएगा। वाराणसी में बेहद अहंकारी और संस्कृतिहीन अधिकारियों की बर्बरता को प्रत्यक्ष रूप से देखने के बाद इन ध्वस्तीकरणों से मुझे बहुत अधिक आश्चर्य नहीं हुआ। 9 दिसंबर 2022 की एक ठंडी दोपहर में मैंने लखनऊ से अयोध्या के लिए बस पकड़ी। अयोध्या पहुंचने पर सबसे पहली चीज जिसने मेरा ध्यान खींचा, वह थी सड़क के बीचों बीच स्थापित एक विशाल वीणा। मुझे लेने आए मेरे मित्र ने मुझे बताया कि तत्कालीन राजा का बेटा लता मंगेशकर का बहुत बड़ा प्रशंसक था और उसने उन पर एक किताब भी लिखी थी। वीणा उनके सम्मान में स्थापित की गई थी और इसका उद्घाटन किसी और ने नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी ने किया था। जैसे ही हम नया घाट से बिरला धर्मशाला की ओर बढ़े, सड़क के किनारे मलबा जमा हो गया था और दुकानदार अपनी अस्थायी दुकानें फिर से लगाने की कोशिश कर रहे थे। वातावरण में धूल भरी हुई थी और धुंध ने मौसम को और भी उदास कर दिया था। कुछ ठीक नहीं लग रहा था, कुछ कमी थी। गांधी आश्रम के पास राम जानकी शुक्ल मंदिर के आंशिक रूप से ध्वस्त मेहराबों से लखौरी ईंटें ऐसे झांक रही थीं जैसे किसी गरीब आदमी का टूटा जबड़ा हो जिसे बिना किसी कारण के मुक्का मारा गया हो। यह एक दो मंजिला मंदिर था जिसे 1872 में बाराबंकी के एक ब्राह्मण परिवार ने बनवाया था। मंदिर का वह हिस्सा जो सत्संग, आध्यात्मिक प्रवचन या सभा के लिए इस्तेमाल होता था, जिसे जगमोहन के नाम से जाना जाता है, उसे तोड़ दिया गया क्योंकि यह विकास में बाधा बन रहा था। गर्भगृह को अछूता छोड़ दिया गया। शुक्ल मंदिर के बगल में लाल मोहरिया चाह भैया धर्मशाला थी जिसके परिसर में एक मंदिर था। इसका स्वामित्व नेपाल के तत्कालीन राजघरानों के तीर्थ पुरोहित परिवार के पास था। मालिक देवेंद्रनाथ मिश्रा मुआवजे से संतुष्ट थे और उन्हें राहत महसूस हुई कि उनका मंदिर अछूता रहा। लेकिन वे इस बात से भ्रमित थे कि राज्य विरासत संरचना को क्यों मिटा रहा है। उन्होंने मुझे अपनी अलंकृत और जटिल नक्काशीदार चारदीवारी की छवि दिखाई जिसे ध्वस्त कर दिया गया था और कहा, विदेशी लोग स्वदेशी वास्तुकला को देखने आ रहे हैं, न कि आधुनिक डिजाइन वाले भव्य दरवाजे। शुक्ल मंदिर के दूसरी ओर स्थित एक विस्तृत स्थान को देखकर मैं आश्चर्यचकित रह गया। कभी वहां खड़े भव्य जुड़वा मंदिर अब इतिहास का हिस्सा बन चुके हैं। जिसने इन मंदिरों की पुरानी तस्वीरें नहीं देखी हैं, वह इनकी भव्यता की कल्पना भी नहीं कर सकता। दिसंबर 2022 में बुलडोजर से गिराए जाने वाले ये पहले मंदिर थे। मैं सबसे खूबसूरत बिड़ला धर्मशाला में पहुंचा, जिसकी चार दीवारी सड़क चौड़ी करने के लिए गिरा दी गई थी। चूंकि सामने एक बड़ा बगीचा और मंदिर है, इसलिए धर्मशाला टूटने से बच गई।